देवियों सज्जनों, भगवत गीता के चैप्टर 17 की हम चर्चा कर रहे हैं, जो इंसान में जो नेचर है, वो जो कुछ भी करता है उसकी जो डिफरेंसेस से जो अलग अलगपन है वो क्यों है, क्योंकि उसकी श्रद्धा जैसी होती है व्यक्ति वैसा ही होता है। उसकी जो बिलीफ सिस्टम है, जब से पैदा हुआ लेकर के तब अभी तक, जिस तरह की उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरह के उसको एक्सपीरियंस हुआ है, जिस तरह की चीजों को उसने जाना है, और इन सब का मेल बना करके जो एक बिलीफ सिस्टम उसके अंदर बना है, उसकी पर्सनालिटी वैसा ही होता है। और इसको इस चैप्टर में तीन तरह के क्लासिफाई किया है, तीन तरह के लोग होते हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि आपने कहा कृष्ण कि जो लोग शास्त्र को न मान के, शास्त्र के जो रूल्स है उसको फॉलो न करके, श्रद्धा भाव से, उनमें श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, पर वो शास्त्र को फॉलो नहीं करते, अपना काम करते हैं, जो भी भक्ति पूजा पाठ जो भी, ऐसे लोगों को आप किस कैटेगरी में रखोगे? तब कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान होना भी समझने की जरूरत है कि वो कैसी श्रद्धा है। वो श्रद्धा भी तीन तरह का है, और वो तीन तरह की जो क्लासिफाई हुआ है वो बेस करता है कि व्यक्ति की ओवरऑल किस तरह का माइंडसेट है, किस तरह की उसकी टेंडेंसीज हैं, किस तरह की उसकी नेचर है, किस तरह का उसका बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, उसके बेस पर श्रद्धा डिपेंड करती है। और व्यक्ति जिस टाइप का है, मैं जैसा भी हूं, आप जैसे भी हैं, कोई भी कैसा भी है, इट्स बिकॉज ऑफ हिज ओन बिलीफ सिस्टम। जब हम बिलीफ सिस्टम की या फेथ की बात करते हैं, इसको सिर्फ रिलीजियन या पंथ या पूजा पद्धति से जोड़ के मत देखिए। दुनिया में किसी भी चीज को देखने के लिए जो आपकी नजरिया है, जो आपकी व्यू है, वो बिलीफ सिस्टम के बेस पर होता है। आप कैसा खाना खाते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, जब किसी सामने वाले को आप देखते हो तो आपके रिएक्शन क्या होता है, जब आप बीमार होते हैं तो क्या सोचते हो, जब आप बच्चों को पालते, थोड़ा साउंड कम कर लीजिए, इको हो रहा है, जब आप बच्चों को पालते हैं तो आपके मन में क्या चलता है, जब आप व्यापार करते हैं या सामान खरीदने जाते हैं तो आप किस तरह के रिएक्ट करते हैं, जब आप पॉलिटिक्स में है तो किस तरह के बिहेव करते हैं। ओवरऑल समाज के किसी भी फील्ड में जहां भी हम हैं, जैसा भी करते हैं, हम अपने घर में अपने पति पत्नी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, या बाहर अपने मित्रों के साथ, या कार्यक्षेत्र में, वर्क फील्ड में दूसरे कॉलिग्स के साथ, जिस तरह का हमारा बिहेवियर है, वो सबके सब हमारे बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। हम क्या मानते हैं, हमें किस तरह की चीजों को हम मानते आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति हो जो भारत में ही पला बड़ा है, और वो बड़ा ट्रेडिशनल वे में पला बड़ा हो, और उसके सामने कोई अगर वेस्टर्न म्यूजिक बजाए, वो कितना भी क्लासिकल हो, कितना भी सूथिंग हो, कितना भी अच्छा हो, उसको लगेगा ये तो क्या लफंगों का गाना लगा दिया। ऐसा नहीं है कि सारे वेस्टर्न म्यूजिक लफंगे होते, वो तो इंडियन म्यूजिक, उससे भी बड़े लफंगे आपको मिलेंगे, बेकार मिलेंगे। पर ये क्या है, बिलीफ सिस्टम है, उसके अंदर पहले से ही ये समाया हुआ है कि कोई भी वेस्टर्न चीजें बहुत बुरी चीज है, बिगाड़ने वाली चीज है। ऐसा तो हमेशा नहीं होता है ना, हजारों चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, पर किसी ने ऐसा मान लिया है सोशल इंप्रेशन के कारण, परिवार में इधर उधर सुन के सिक्के, जैसे वेस्टर्न लोगों में एक ओवरऑल सोशल एक परसेप्शन है कि जो भारत के लोग हैं वो बड़े गरीब होते हैं, बड़े करप्ट होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा तो सब जगह नहीं मिलता। दुनिया के सबसे बड़े बड़े धनियों में भी भारत के लोग आते हैं। सबसे बड़े ऑनेस्ट लोगों में भी आपको भारत में लाखों करोड़ों में मिलेंगे। ये जो परसेप्शन जिसको हम कहते हैं, जब इंडिविजुअल परसेप्शन होता है वो उसका बिलीफ सिस्टम होता है। कुछ चीजें उसने मान लिया है, जिस तरह के उसको फीडबैक मिला है, इनपुट मिला है किसी भी तरीके से, तो उसने एक बिलीफ सिस्टम बनाया। आपके मेरे बारे में कुछ बिलीफ सिस्टम है, मेरे आपके बारे में है, हम सबका किसी तीसरे के बारे में है। ये श्रद्धा पर डिपेंड करता है, और व्यक्ति की जैसी श्रद्धा हो वो वैसा होता है। सो इसका अर्थ है कि हम ही अपनी बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं। वी ऑल मेक आवर ओन फेथ एंड देन आवर फेथ मेक अस। हम अपनी श्रद्धा को बनाते हैं जिस तरह की हम चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी मेमोरी में वो सब जाता है, फिर देन ये हमें रेगुलेट करने लगता है, हमारी जो रिएक्शन है वो उसी तरह का होने लगता है। तो हमारे द्वारा, मेरे द्वारा मेरा, मेरी आस्था या मेरा विश्वास बनाया हुआ होता है, फिर बाद में वही आस्था या विश्वास मुझे कंट्रोल करता है। और वो जो आस्था हम बनाते हैं वो हमें पता नहीं लगता, छोटी छोटी चीजों से हम हमारे चीजें वो बनती जाती है, बनती जाती है। वो छोटी बड़ी चॉइसेस हैं, आप कपड़े खरीदने जाते हैं, खाना खरीदने जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, लोगों से बात करने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, मंदिर में आते हैं, आपकी किस तरह की रिएक्शन होता है, किस तरह की आप दूसरों के साथ डील करते हैं, छोटी छोटी चीजें से पता लगता है। किस तरह के हम अपने फ्यूचर की कल्पना करते हैं अलग अलग है। कोई अमेरिकन पेरेंट्स है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा पैदा इससे इंडिपेंडेंट हो, वो किसी पर डिपेंड ना करे। माँ बाप खुश होते हैं जब बच्चा इंडिपेंडेंट होता है। अपोजिट है इंडियन पेरेंट्स का, बच्चा इंडिपेंडेंट होने लगे तो माँ बाप टोकने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, इवन यहां रहकर भी। बड़े होने तक भी गिल्टी फीलिंग करते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मुझे उसके लिए करना चाहिए। ये इंडियन पेरेंट्स में गिल्टी फीलिंग होती है अगर बच्चा खुद कमाए, खुद आगे बढ़े। अमेरिकन पेरेंट्स को ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, ये अलग अलग बिलीफ सिस्टम जो हमने क्रिएट किया व हमें मिला, उसके बेस पर हम रिएक्ट करते हैं। अब ये तीन तरह की जो आस्थाएं हैं, श्रद्धा है, उस पर हमारी सब चीजें बेस्ड है। हम कैसे खाते हैं वो भी तीन तरह के क्लासिफाई आप कर सकते हैं, खाना देख करके ये किस कैटेगरी का आदमी है, किस कैटेगरी की व्यक्ति है, उसके हाव भाव व्यवहार से भी आप बता सकते हैं ये किस कैटेगरी का है। इसीलिए कहा, पढ़िए मेरे साथ, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसाः जनाः। तो शुरू करते हैं पूजा से, फिर पूरे चैप्टर में अलग अलग चीजों को लेकर वो एनालाइज करेंगे कि अगर कोई सत्वगुणी व्यक्ति है उसका खान पान कैसे होता है, रहन सहन कैसे होता है, दान कैसा होता है, पूजा कैसी होती है, रजोगुणी हो तो कैसा होता है, तमोगुणी हो तो कैसा होता है। जो सत्वगुणी लोग हैं, जो प्योर हार्टेड पर्सन है, वो यजन्ते पूजते हैं देवान, देवों को पूजते हैं। जो रजोगुणी हैं, जो पैशनेट बहुत हैं, वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। और जो तमोगुणी है, लोअर ऑर्डर के नेचर वाले लोग हैं, वो भूत प्रेत आदियों को पूजते हैं। क्या मतलब है इसका, देवता कौन है? पहले भी हमने चर्चाएं की है, देवो दानाद व दीपनाद व द्योतनाद, जो भी हमें हमें कुछ देता है, जिसका भी मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, मुझे आगे बढ़ने में, मुझे पालने में, मुझे इस तरह के सामने लाने में, वो सब मेरे लिए देवता है। परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रभु से लेकर के पेड़ पौधे तक सब देवताएं हैं। वो ईश्वर जिसके बिना ये संसार नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकता, ये सूरज चांद जिनके बिना प्रकाश नहीं हो सकता, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी के ये स्पेस हो, हवा हो, पानी हो, पेड़ हो, पौधे हो, जड़ के कोई भी नेचुरल एलिमेंट हो, और चेतन में मेरे माँ बाप गुरु समाज के वो हर व्यक्ति जिसका मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो सब मेरे लिए देवता है। जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो देवताओं को पूजता है। इसीलिए हमारे यहां धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति वगैरह में, हर गृहस्थी के लिए पंच महायज्ञ का विधान किया। यज्ञ करना, देव की पूजा करना, जिसको वेदों में पंचायतन कहता है, पंचायतन पूजा, आजकल उसका अर्थ अलग हो जाता है। पांच तरह के देवताओं को हर व्यक्ति पूजे। परमेश्वर जो पूरे समस्त संसार का सृष्टा है, कर्ता है, पालयिता है, प्रभु है, पहला। उसके बाद इस नेचर के हर वो तत्व जिनके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो हवा, पानी, नदी, पर्वत, जंगल, पहाड़, तृतीय मेरे माँ बाप जिनके कारण मुझे इस संसार में आने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे पाला पोषा, गुरुजन जिनके कारण मुझे शिक्षा मिली, ज्ञान मिला, चौथा अतिथि ज्ञानी विद्वान जिनके कारण मैं पशुतुल्य इंसान से एक देवतुल्य मनुष्य बना। बिना ज्ञान के इंसान पशु जैसा बिहेव करता है, और जब ज्ञान होने लगता है तो वो देवत्व की ओर जाता है। इसीलिए जिस दिन पहली बार ज्ञान लेने का संस्कार हमारे धर्म में व्यवस्था है, उसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं। जनेऊ पहनते हैं, आजकल तो लोग पहनना ही छोड़ दिया। और उस उपनयन संस्कार के बाद कहते हैं व्यक्ति द्विज हो जाता है। द्विज का मतलब दोबारा जन्म उसका होता है, सेकेंड लाइफ मिलता है। क्यों? पहली लाइफ जो मां के पेट से जन्म होने से मिला, जो अंदर से बिल्कुल खाली है, पशु के तुल्य है, कोई समझ नहीं, छोटा बच्चा है, क्या समझता है। जब पढ़ाई लिखाई करेगा, जो ज्ञान विद्या प्राप्त करेगा, तब उसका एक दूसरा जन्म होगा। वो उसी संसार को जहां वो आज तक दूसरे नजर से देखता था, एक और नजर से देखने लगेगा। हर चीज को एक दूसरी नजर से देखेगा, पहले अज्ञान के नजर से, अब ज्ञान के नजर से, तो दोनों के व्यू पॉइंट में अलग होगा, वो दूसरा जन्म होता है। तो इसीलिए वो जो अतिथि के रूप में ज्ञानी विद्वान, हमारी भारतीय भाषा में हम उसको सन्यासी, साधु, ज्ञानी, प्रब्राजक, समाज की सेवा में लगे हुए लोग, इनको भी देवता समझना। और पांचवा कहा पंचदेव में, तुम्हारे आसपास के जितने भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो भी हैं, उनका भी तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, तुम्हें समझ में नहीं आता, पर उनका भी ख्याल रखना। इन सबका ख्याल क्यों रखना, इनकी पूजा क्यों करना? कुछ अचीव करने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं, अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, अपने आप को इस संसार का, इस समाज का पार्ट समझने के लिए, एक अंश समझने के लिए। इन सबके कारण मेरा अस्तित्व है। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, प्रभु से लेकर मां बाप, प्राकृतिक चीजों से लेकर ज्ञानी विद्वान पशु पक्षी सबको आदर भाव से देखता है, पूछता है। राजसिक व्यक्ति एक दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, वो किसको पूछते हैं? यक्ष रक्षांसी। यक्ष कहते हैं पौराणिक कैरेक्टर है जो धनी, जिसके जो बहुत धन इकट्ठा करता है उसे यक्ष कहा जाता है। रक्ष जो रक्षा करता है, इसका मतलब जो बहुत पावरफुल लोग हैं या बहुत रिच लोग हैं, मतलब जहां कुछ मैटेरियल फायदा मिल सकता है ऐसे लोगों की पूजा करना आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते, वो किसी पॉलिटिकल लीडर को भगवान से कम नहीं मानते, किसी जिस कंपनी में काम करते हैं उसके मालिक को भगवान से नीचे नहीं मानते। भारत में तो आप आजकल ज्यादातर लोगों के घर में भगवान की जगह अपने गुरुओं का फोटो मिलेगा। वो गुरु कौन है? कोई सिद्ध गुरु तो हो ही नहीं सकता। कोई सिद्ध होगा जिसने आत्मा को जाना होगा, परमात्मा को रियलाइज किया होगा, ऐसा व्यक्ति कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकता कि कोई मुझे पूजे, कोई मेरी फोटो लगाए, सोच नहीं सकता। इसका मतलब जो पापी होगा, पाखंडी होगा, वही गुरु के रूप में अपने आप को भगवान के बराबर कंपेयर करेगा, भगवान से छोटा बड़ा आसपास का बनवाएगा, अपने फोटो को पुजवाएगा, खुद को पुजवाएगा। इसके अलावा और कोई भी नॉर्मल सीधा सादा एक अच्छी से सोच रखने वाला व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता कि मेरी कोई पूजा करे, मेरा फोटो कोई पूजे, सिवाय कोई अधम विचार का व्यक्ति। वो अलग बात है गुरु किस लिए गुरु बना है, पर जो रखते हैं क्यों रखते हैं, भगवान को छोड़कर क्यों किसी इंसान को पूज रहा है, कोई किसी बाबा को पूज रहा है, कोई पॉलिटिकल लीडर को पूज रहा है, कोई किसी सोशल रिफॉर्मर को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी बड़े धनी व्यक्ति की पूजा में लगा है। पूजा का अर्थ नहीं कि आरती उतारना, रिस्पेक्ट दिखाना, एडोर करना, उसके अलावा और किसी को ना मानना। क्यों? कुछ फायदा है। बाबाओं की पूजा क्यों बढ़ी? क्योंकि व्यक्ति सेल्फिश होते गए, भगवान को पूजने से बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, नौकरी चली जा रही है तो नहीं आने वाली है, वगैरह वगैरह वगैरह, बाबाओं को करने से होता है। राजसिक व्यक्ति जिसमें कुछ पाने की चाहत है, कुछ मैटेरियल चीजों में आगे बढ़ना चाहता है, वो देवताओं को छोड़ करके धन पावर जिसके पास है, जिसके पास धन है, पावर है, प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों को वो पूछता है। वो मेरे कंपनी का बॉस हो, मेरे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, मेरे पॉलिटिकल थ्योरी जिसको मैं मानता हूं उसका कोई गुरु हो, ध्यान रखिए इसमें कोई आस्तिक और नास्तिक नहीं होता है। लेफ्टिस्ट लोग भी जो एथिस्ट होते हैं वो भी माओ स्टालिन लेनिन को किसी भगवान से कम नहीं मानते हैं। ये सब राजसिक, किसी फायदे के कारण, कुछ पाने की चाहत के कारण देवत्व को छोड़ करके किसी पावरफुल व्यक्ति को जिसके पास कुछ है और फायदा मिल सकता है ये सोच के जब कोई पूछता है, ऐसे व्यक्ति रजोगुणी होते हैं। श्रद्धा उसमें भी है। अर्जुन ने पूछा था, शास्त्र को नहीं मानता पर श्रद्धावान है तो क्या कहोगे? तो ये व्यक्ति भी श्रद्धा करता है, जो किसी पॉलिटिकल लीडर को पूजता है, जो किसी धनी व्यक्ति को पूजता है, जो किसी बाबा को पूजता है, उसमें भी श्रद्धा है, पर उसकी श्रद्धा के पीछे उसका पैशन काम करता है, कुछ पाने की चाहत काम करता है। तीसरा है तमो, दो तीसरी टाइप के लोग हैं जो मरे हुए लोगों को पूजना, जैसे जंगली लोग होते हैं, वो पेड़ पौधों को पूजते हैं। पढ़े लिखे लोग भी भारत में देखिए मंदिरों से ज्यादा आजकल वो मजार पर जाते हैं। ये हिंदू लोग भी, मुसलमानों के पीरों का मजार होता है, निजामुद्दीन चिश्ती, अजमेर की वो चिश्ती, वो कौन है, क्या चीज है ये? कोई फकीर जो मर गया है उसका ग्रेवयार्ड है, समाधि है, पूजने जाते हैं। मरा हुआ आदमी का जिसको वहां गाड़ा गया है उसको पूजने जाते हैं। हिंदू जाते हैं, मुस्लिम जाते हैं, हर कोई जाता है। बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में भी जो उनके सेंट होते हैं वो मारे जाते हैं, जहां उनको दफनाया जाता है वहीं पर वो पूजने के जाते हैं। ये क्या है, मरे हुए व्यक्ति को पूजना, भूत को। बहुत सारे भारत में तांत्रिक लोग होते हैं, हिंदू धर्म का एक पार्ट है, जो श्मशान में पूजते हैं हड्डियों को, डेड बॉडी को। बहुत सारे लोग माफियाओं के डांस को पूछते हैं, ये तमोगुणी टाइप के लोग हैं, जो मरे हुए लोगों के समाधि को, ग्रेवयार्ड को, टॉम्स को, या बहुत बुरे लोगों को पूजते हैं, खराब लोगों को पूजते हैं, वो तमोगुणी नेचर के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गीता में कोई नहीं कह रहा है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो। सिर्फ बताया कि ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसा करता है वो ये कैटेगरी में आता है, जो ये करता है वो इस कैटेगरी में आता है। एनालाइज हमें खुद का करना है, कोई बताने वाला हमारा या नहीं है कि कमांड देने वाला कि ये करो यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, नो। इंसान का नेचर, इंसान इसी तरह का है, हम एनालाइज करें। अगर हम थर्ड ग्रेड में है तो सेकेंड ग्रेड में जाए, सेकेंड ग्रेड में है तो फर्स्ट में जाए, नीचे है तो ऊपर जाए, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह जो लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो भी अलग अलग तरह के। मेरे साथ बोलिए, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः माम् चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुर निश्चयान्। तपस्या करना, कष्ट सहना, शरीर मन बुद्धि को कष्ट देना, तपस्या का अर्थ होता है तपह द्वंद्व सहनम। जो पेयर ऑफ अपोजिट है, अलग अलग चीजों का जो पेयर्स होते हैं, जो अपोजिट चीजों का जो पेयर्स है, उसको सहने की प्रैक्टिस करना। जैसे सुख है, दुख है, निंदा है, प्रशंसा है, अच्छा खाना है, खराब खाना है, अच्छा है, बुरा है, ठंड है, गर्मी है, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, और इन दोनों में, दोनों को सहने की आदत डालना कि दोनों में से कोई भी लाइफ में आए मैं एक जैसा रहूं, ये आसान नहीं है, मुश्किल है, पर इसको पाने के लिए जो कोशिश है वो कोशिश को तप कहते हैं। पर कुछ लोग तप क्यों करते हैं, ऐसा ये तप का करने का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रांग बने कि जब वो कोई काम करने जाए तो ये सब चीजें उसके लिए ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम ना बने। हमारे जो सैनिक होते हैं, जो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं उनको भी ट्रेनिंग मिलती है, शरीर को तपाते हैं, मन को तपाते हैं, साइकोलॉजिकली फिजिकली उनको उस टॉर्चरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि अगर ऐसी कोई आपको सिचुएशन आए कैसे आप इसको सह सकते हो। इसी तरह अध्यात्म में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी, जब आप अच्छे काम में जाते हैं आपको मुश्किल आएंगे तो सहने की आदत डालने के लिए लोग तपस्या करते हैं। पर इसमें भी अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से करते हैं। कुछ लोग कैसे करते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम, दो जो प्रैक्टिस टेरिफिक ऑस्टेरिटीज नॉट एंजॉइंड बाय द स्क्रिप्चर, शास्त्र के वचन को बिना माने उटपटांग तपस्या करते, शरीर को कष्ट देते, और क्यों करते, दंभ के कारण, हिपोक्रेसी के कारण, कुछ दिखाने के लिए, कुछ प्रूव करने के लिए, अहंकार के कारण, या तो खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के कारण, या काम, कुछ डिजायर है, कुछ पाने की इच्छा है उसको फुलफिल करने के कारण, राग बलान्विता, कोई अटैचमेंट है, लस्ट है, इन सब के कारण कोई तपस्या करते हैं, शरीर को टर्चर करते हैं, शरीर के ऊपर जोर डालते हैं, जबरदस्ती अपने शरीर को दुख देते हैं। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राम चेतस, अपने शरीर के हर इंद्रियों को तड़पाते हैं, केवल शरीर को नहीं तड़पाते, उस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसको भी सुखाने की कोशिश करते हैं। समझ लेना कि वो असुर टाइप के लोग हैं, वो राक्षस प्रकृति के लोग हैं। जब आप सिर्फ कुछ दिखाने के लिए पब्लिक में, कुछ प्रूव करने के लिए कुछ करते हैं, तो वो व्यक्ति को असुर बनाता है। अगर वो अंदर का, अपने अंदर को शुद्ध करने के लिए नहीं ये तपस्या कष्ट सहना, सिर्फ कुछ हिपोक्रेसी के लिए, पब्लिक को मनाने के लिए, रेस्पेक्ट पाने के लिए कुछ हम करते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, हिपोक्रेसी होती है। आपको अगर कभी कुंभ मेला जाने को मौका मिला, देखिएगा वहां हजारों लाखों साधु सन्यासी पूरे भारतवर्ष से, क्या आजकल तो बाहर से भी आते हैं, करोड़ों लोग होते हैं वहां। आपको हजारों लाखों हजारों ऐसे अच्छे साधु मिलेंगे, पर ऐसे हजारों भी मिलेंगे जो फनी है, आपके लिए फनी होगा, उन्होंने बहुत शरीर को तड़पाया है। कोई मिलेगा एक टांग पर खड़ा है, जी 15 साल से एक टांग पर खड़ा हूं, दूसरा टांग तो अकड़ गया है, क्यों भाई, तपस्या कर रहा हूं, तुम्हारी क्या विशेषता है, कि 10 साल से मैं दुग्धाहार करता हूं, दूध पीता हूं और कुछ नहीं खाता हूं, ठीक है भाई, आपकी क्या विशेषता है, फलाहारी बाबा हूं, क्या मतलब है, फल के अलावा और कुछ नहीं खाता हूं, तो आप क्यों महान है, एक हाथ ऊपर कर रखा हूं 12 साल से, कभी नीचे नहीं किया, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड देने के लिए तो ठीक है, पर इससे मिलेगा क्या, कौन सा रियलाइजेशन होगा, कौन सी सुख शांति आनंद परमात्मा आत्मा कौन सा मिलेगा इससे, क्या सिद्ध करने के लिए कर रहे हो, सिवाय अपने अहंकार को तृप्त करने और पब्लिक की तालियां बटोरने के अलावा और आपको क्या मिलेगा। महात्मा बुद्ध भ्रमण कर रहे थे अलग अलग राज्यों में, कश्मीर में पहुंचे, तो कश्मीर के हिमालय में गुफाओं में हजारों लाखों तपस्वी तपस्या करते थे, साधना करते थे, अनंत काल से करते आ रहे हैं, आज भी आपको हिमालय में बहुत साधु सन्यासी तपस्या करते हुए मिलेंगे। तो एक सिद्ध बाबा साधु को पता चला कि महात्मा बुद्ध आए हैं, बड़े पहुंचे हुए सिद्धि उनके पास है, तो उनसे मिलने के लिए आए। महात्मा बुद्ध से मिले और हाथ जोड़ के कहा कि मुझे भी सिद्धि मिली है, 25 साल तक मैंने हिमालय की गुफाओं में साधना की, तपस्या की, शरीर को तपाया। महात्मा बुद्ध बोले, बहुत अच्छी बात है और मैंने भी सिद्धि प्राप्त की है। अच्छा, क्या सिद्धि आपने प्राप्त की है? बोले, मैं पानी में चल सकता हूं, डूबूंगा नहीं, ना पानी पर चलूंगा तो डूबूंगा नहीं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, बोले, भगवान क्या कर दिया आपने, जीवन के 25 साल आपने बर्बाद कर दिया एक चवनी बचाने के लिए। पानी में जाना ही था तो नाव वाले को चवनी दे देते, पार करा देता, उससे बचने के लिए 25 साल बर्बाद कर दिया। सिद्ध पुरुष को समझ आया, ये सब किस लिए करते हो, सिवाय पब्लिक को मेस्मराइज करने के अलावा इससे क्या मिलेगा? अगर कोई व्यक्ति आपको दावा करे कि मैं चमत्कार कर सकता हूं, जैसे कि हम बड़े इजीली मान भी जाते हैं, उस चमत्कार का क्या मूल्य है देवियों सज्जनों? क्या कोई सूरज बना सकता है, चांद बना सकता है, इंसान का खून बना सकता है, इंसान बना सकता है, पानी बना सकता है, ऑक्सीजन बना सकता है, हवा बना सकता है, आग बना सकता है, पेड़ बना सकता है, आलू बना सकता है, अपने सर में उगा सकता है, क्या चमत्कार करेगा? जो करना है ईश्वर ने कर रखा है। अगर कोई ऐसा अपनी कहे कि मैं इतने साल दे करके ये अचीव किया हूं, वो 2% की चीज नहीं है, वो आसुर प्रवृत्ति का है, क्योंकि उसके पीछे जो उसका सोच रहा है वो सिर्फ अपने आप को पब्लिक में कुछ दिखाने के लिए। दंभ और अहंकार से युक्त तपस्या असुर प्रवृत्ति का होता है, जिसमें कोई अपने मन को शुद्ध करने का कोई भाव नहीं है। और आपको बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे आश्रमों के, ऑर्गेनाइजेशन के, फेथ के, बहुत सारे मिशनरी वर्कर्स मिल जाएंगे, फॉलोअर्स मिल जाएंगे, जो आपको ये समझाते हुए बताएंगे, अगर आप हमारे सो कॉल्ड प्रोफेट गुरु जो भी को फॉलो करो, वो कितना चमत्कार करता था, वो करते थे, ये करते थे, हमारे बाबा करते हैं, आ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो पाप करते हो करते रहना, जो बुरा करते हो करते रहना, बस हमारे गुरुदेव को गुरु मान लो, हमारे प्रोफेट को प्रोफेट मान लो, उसकी प्रोफेसी को एक्सेप्ट कर लो, सारे पापों से मुक्त सिद्ध हो गए। लोगों को मिसलीड करने के अलावा यह और कुछ नहीं। कुछ असुर आम लोगों को असुर बनाने के लिए कोशिश करने के अलावा और कुछ नहीं। कोई भी किसी भी मत में, पंथ में, विचार में, समाज में अगर ये बात है कि तू जो गलत काम करते हो करो, हमारे पास उससे छुटकारा पाने का रास्ता है, या कन्फेस कर लो, गंगा नदी में डुबकी लगा दो, ये इसको मान लो, इसको पूज लो, यहां इसके द्वारा तुम्हारे अपराध, तुम्हारे पाप छूट जाएंगे, एक्चुअली हम असुर मेकिंग मशीन बना रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल बने, क्राइम करें, अपराध करें, पाप करें। हम उनको मोटिवेट करते हैं क्योंकि हमारे पास उस पाप से मुक्ति का रास्ता है, कुछ भी करके आ जाओ, हम तुम्हें शुद्ध कर देंगे, दोबारा जाकर वही करते रहना। आगे हम चर्चा सुनेंगे। जैसे अभी हमने सुना कि तप और पूजा भी अलग अलग कैटेगरी की होती है, इसलिए खान पान भी अलग अलग तरह का होता है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तप तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आगे भी हर मामले में 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे, खाने की दृष्टि से भी, यज्ञ की दृष्टि हो, तप हो, दान हो, लाइफ में कुछ भी हम करते हैं, उस करने के पीछे जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको आप तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। एक सत्वगुणी है, शुद्ध मन वाला है, शुद्ध विचार वाला है। रजोगुणी है, जो कुछ फायदे के लिए, कुछ उद्देश्य लेकर के इन्वॉल्व है। तमोगुणी है, जो बहुत ही विकृत मानसिकता के साथ करता है। इन सब की चर्चा आगे करेंगे। हिंट्स देने के लिए सत्वगुण का भोजन देख लीजिए, अगले बार इसकी ज्यादा चर्चा करेंगे। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रियः। तीन तरह के खाने होते हैं टेबल पर, जो आप आपकी थाली में खाना होता है, किसको किस खाने में इंटरेस्ट है उसे पता लगेगा कि वो किस गुण का व्यक्ति है अपने आप। पहली तरह की खाना है जिसमें आपकी आयु बढ़े, इंक्रीज योर लाइफ, सत्व आपकी एनर्जी बढ़े, जिसको खाने से आपकी एनर्जी बढ़ता हो, बल आपकी स्ट्रेंथ बढ़ता हो, आरोग्य आपकी गुड हेल्थ होता हो, सुख जिसको खाने से आपको खुशी मिलती हो, प्रीति सेटिस्फेक्शन होता हो, रस्या जो बहुत डेलिशियस हो, टेस्टी हो, अच्छा लगे, स्निग्ध सूथिंग हो, खाने में आपको बहुत मुश्किल नहीं करना पड़ता हो, निगलने में दर्द ना होता हो, दांतों को प्रेशर ना पड़ता हो ज्यादा, सब्सटेंशियल हो और एग्रीएबल हो, आपके शरीर को, आपके पेट को, स्टोमक को, जैसी आपकी नेचर है बॉडी का उसके हिसाब से वो एग्रीएबल हो और आपको अच्छा लगे, ऐसा अगर खाना खाते हैं तो सात्विक खाना है। और ऐसे खाने को जो हमेशा खाता है वो सात्विक व्यक्ति है। राजसिक और तामसिक के लिए आपको अगले रविवार के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ धन्यवाद।